So today is Monday, 12th of January. No, 16th of January, 2017. We're here. Punjabi Bhakti Yatra. Chi Chaitanya Charitamrita Majjhilila, Chapter 9, text numbers 12 through 14.
हरे कृष्णा. तो आज हम आपका स्वागत करते हैं. आज सोमवार है, 16 जनवरी 2017 और चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला अर्थात अध्याय 9 और श्लोक संख्या 12 से 14 की चर्चा करें.
So we're reading about Lord Chaitanya's tour of South India.
हम श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्राओं के बारे में सुन रहे हैं.
से सब वैष्णव महाप्रभुर दर्शने कृष्ण उपासक हैला लोए कृष्ण नामे. After meeting Sri Chaitanya Mahaprabhu, all those different Vaishnavas became devotees of Krishna and began chanting the Hare Krishna Mahamantra.
तो बारहवें प्यार का अनुवाद. श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के बाद वे सारे वैष्णव कृष्ण भक्त बन गए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे.
Let's read the, or let's recite the Guru Parampara's, please. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Saskaraya Gurudeva Shrimate Bhaktivedanta Swami Jinaya Namaste Sanyadati Deve Paramahaya Nityaya Vishesha Shantarati Paskata Deshadaya Om Aginaya Vinandasya Vinayana Shalakaya Lakshman Ganitam Neda Tasmai Sri Gurudeva Namaha
तो ये हमारा एकमात्र जरिया है कि हम राधा कृष्ण तक की उपासना कर सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं गुरु प्रणाम मंत्र के द्वारा. इसलिए हमको दोहराना बहुत जरूरी है.
First through the Vaishnava Acharyas, then through Lalita and Vishakha, then Sri Sri Radha Krishna.
तो पहले वैष्णव आचार्यों को हम की प्रार्थना करते हैं, फिर ललिता विशाखा जी की, फिर राधा कृष्ण की.
And through Radharani we access Krishna. This is the process. Everyone is supposed to know that. And the only way we, one of the prominent ways we execute this proper etiquette is by the recitation of this prayer. It's not just a detail, you know. It's not a detail. This is, you could say, foundational. It's foundational to our parampara to properly recite these prayers.
तो ये हमारे भक्तिमय जीवन का आधार है कि हमें प्रार्थनाओं को याद करें, उनको दोहराएं, और हम सबको जानना चाहिए कि हम राधा रानी के माध्यम से ही कृष्ण को के पास जा सकते हैं।
You understand, sir?
क्या समझे इस बात को?
This building has a foundation. You know, without the foundation, there cannot be a building.
जैसे इस बिल्डिंग का जो है एक आधार है, एक नींव है, उसी तरीके से हमारी भक्ति का नींव ये प्रार्थना है।
Similarly, without these prayers as the foundation of our movement, we cannot have Guru Parampara.
उसी तरीके से ये प्रार्थना है हमारे इस आंदोलन का नींव है, और जो कि गुरु
परंपरा। So many times, Prabhupada told us, "Don't jump over. Don't be monkey. Don't jump over."
तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आप बंदर जैसे जो है वो पूर्वती आचार्यों को के ऊपर पैर रखकर आगे ना बढ़े।
Because some foolish initiates, they used to want to dive deep into the books of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur when, you know, the quality of their chapa was not even very good, and they want to read the books of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So Prabhupada came down to Shinga Guru, "Don't jump over. Don't be monkey. Don't jump over."
तो कुछ ऐसे नौसिखिया दृश्य भक्त थे जिनकी इनका जब भी ढंग से नहीं हो पाता था, लेकिन वो गुरु के पास जाते।
So many fools and offenders have left this movement because they think that they can find something better than Prabhupada.
तो ऐसे कई ध्रुत और बुद्ध रहे हैं, अपराधी रहे हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को छोड़ दिया है ये सोचते हुए कि वो प्रभुपाद जी ज्यादा जान सकते
हैं। And I'll include our friends and brethren, sisters in the Gaudiya mission also. They're also bona fide Vaishnavas, but our biggest concern is not going outside of Gaudiya Vaishnavism. You see, I have to say our line specifically.
जो बाकी गौड़िया मठ हैं और इतने ऐसे भक्त हैं वो भी गौड़िया वैष्णव हैं, लेकिन हमें जो है गौड़िया वैष्णव से बाहर जाकर किसी और संप्रदाय में नहीं जाना चाहिए।
So everyone must meditate on this. Don't jump over.
तो हम सबको इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के ऊपर उनको लांगे ना।
So this text 18, no 13, text 13. We'll read your translation. O Lord Ramachandra, descendant of Maharaj Raghu.
Hey Raghu Vanshi Ramachandra, kripa aap meri raksha kare.
Kindly protect me.
Kripa aap meri raksha kare.
O Lord Krishna, killer of the Keshi demon.
Hey Keshi asur ko maarne wale Krishna.
Kindly protect me.
Kripa aap meri raksha kare.
So we use the nickname this the open road song.
तो हम हमने इनका दूसरा इन प्रार्थनाओं का दूसरा नाम रखा था कि ओपन रोड सॉन्ग, खुली सड़क की गीत।
Whoever knows, of course, most of our brahmacharis are here, but you sometimes go traveling book distribution, and whoever, Rosa, you sometimes go, isn't it, on traveling book distribution? Yes. Whoever goes, who else goes traveling book distribution sometimes? Oh, okay. So every time you go traveling, this should be your theme song, is it not? You do that anyways?
Yes.
You automatically sing this song every time you go out traveling? I mean, it's fine. We live for that. But I'm trying to say this mantra, you know, is the open road song introduced by Chaitanya Mahaprabhu.
तो महाराज कह रहे हैं जैसे खासकर जो संकीर्तन भक्त हैं जो अलग अलग जगह की यात्रा करते हैं या हम भी कहीं यात्रा पर जाते हैं तो हमें ये गीत जरूर गाना
चाहिए।
तो ऐसे यहाँ पर कितने भक्त हैं जो कि उस समय शायद पैदा भी नहीं होंगे, 1970 की बात है, तो हम लोग जिस धुन में मैं ये गाया करते थे उस समय, उसी धुन में मैंने ये
गाया।
और उस समय जो 1970 में हम गाते थे उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन शायद अब उसको ढूंढना मुश्किल।
It's very nice. We're traveling. It just really makes everybody feel really good. Why?
और हम ऐसी यात्रा में जाएं और अगर इसको गाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों?
Because Mahaprabhu introduced it as the open road song. That's why he introduced it.
तो क्योंकि महाप्रभु ने इसको जो है उसका उद्घाटन किया कि जब ऐसी यात्रा में जाए तो हमें ऐसी प्रार्थना ये वाली प्रार्थना गानी चाहिए महाप्रभु यात्रा में ये प्रार्थना गाते थे
Text 14 and you see exactly why we nicknamed the open road song
तो 14 प्यार में हम और देखेंगे कैसे यात्रा का ये जो गीत है इतना प्रसिद्ध
So we'll chant 14 ए श्लोक पते परे करिला प्रयाण Gautame Gangayayay Kaila Gangashna Hey Shloka Pari Karila Payan
Hey Shloka Pate Pari Karila Payan
Gautame Gangayayay Kaila Gangashna
Gautame Gangayayay Kaila Gangashna
Hey Shloka Pate Pari Karila While walking on the road, Sri Chaitanya Mahaprabhu used to chant this Rama Raghava mantra.
मार्ग पर जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इसी राम राघव मंत्र का कीर्तन करते थे.
Chanting in this way, he arrived at the banks of the Gautami Ganga and took his bath there.
इस प्रकार कीर्तन करते करते वे गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्नान किया
So now you see why we nicknamed it the open road song started with Mahaprabhu.
इसलिए हम कहते हैं कि एक तरीके से यात्रा का गीत है या प्रार्थना है क्योंकि महाप्रभु स्वयं इसको कीर्तन करते थे
ecstatically walking down the road singing this mantra. So if you're in your book van and you're going out traveling or even if you're on your way to Vrindavan, sing this mantra.
तो महाप्रभु बहुत ही आनंद पूर्वक जो है जब यात्रा करते थे इस कीर्तन को क्या करते थे तो जब भी हम भी किसी यात्रा पर जाएं और गाड़ी में जाएं तो हमें भी इसका कीर्तन करना चाहिए
meditate on Mahaprabhu and completely ecstasy walking down the road barefoot simply thinking about Krishna and singing this mantra carefree you know no stress no metal platform like us you know just ecstasy
तो हम ध्यान कर सकते हैं कैसे महाप्रभु नंगे पांव हाथ ऊपर करते हुए और बिना किसी चिंता के इस कीर्तन को गाते हुए जा रहे हैं
so the open road song you can see it's just like actually opening the heart
तो वास्तव रूप में ये एक ऐसा यात्रा का गीत है प्रार्थना है जो कि हमारे हृदय को
real freedom like in the Bhagavad Gita Krishna mentions the regulative principles of freedom
तो ये जो है वास्तव रूप में हमें आजाद करने के लिए है जैसे भागवत गीता में भी कहते हैं कि आजादी का तरीका बताते हैं
Real freedom is not being attached to griha, certainly not.
तो असली में जो आजादी है वो गृह से आसक्त होकर नहीं है.
It's amazing how we all have attachments.
हम सब जानते हैं कि हमारी कुछ न कुछ आसक्तियां हैं.
I mean, I'm not going to knock it. You know, everybody, it's just a statement of fact.
और ये बात एक तथ्य चीज है. मैं इसके ऊपर और छेड़ूंगा नहीं.
During japa time in the morning.
जब सुबह जपे का समय होता है
Generally, everybody has their favorite place to sit.
हर किसी की एक मनचाही जगह होती है बैठने की
If somebody else is sitting in their spot, sometimes they're silently, at least mildly annoyed. Somebody else is sitting in my spot.
तो अगर हम कहीं जिस स्थान पर बैठे हैं हर रोज अगर वहां कोई और आके बैठ जाए तो निश्चित रूप से हमको शायद बोले ना लेकिन मन ही मन हमें कुछ ना कुछ आक्रोश होता
है इवन ब्रह्मचारी कैन क्लेम अ स्पॉट ऑन द रग इन द टेंपल रूम यस दिस इज माइन
ब्रह्मचारी भी एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि जो मंदिर में स्थान में जो जप कर सकते हैं उनको अपना कह के वहां बैठ सकते
हैं
क्या आपका ऐसा अनुभव रहा है प्रभु
No.
नहीं.
You're so advanced, you have no material attachments at all, no?
तो आप इतने उन्नत हैं अध्यात्म दृष्टिकोण से कि आपकी सारी आसक्तियां खत्म हो गई हैं.
What is this shaking head? What does that mean? Indeed, that can mean anything.
He's saying yes, Maharaj.
This is the
freedom song. Freedom song. It's a wonderful feeling. I mean, because I've done it myself on traveling parties in the United States.
महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है.
Isn't that real freedom?
क्या असली में एक आजाद होने का अनुभव नहीं?
When the material world dissolves, poof, isn't that real freedom?
इसमें ऐसा लगता है कि पूरा भौतिक संसार जो है खत्म हो गया है.
You say, Maharaj, dream on.
आप कह सकते हैं महाराज ये तो एक स्वप्न जैसा लगता है.
No, the whole point is to realize that we're in a dream.
असली में बात ये समझने की है कि ये सपना है.
Krishna consciousness means to awaken from the false dream.
और कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि हमें इस झूठे स्वप्न से उठाना.
Like the mirage on the road, we've discussed several times that when it's very hot on the road, you could see it looks like water on the road. You know, somebody may even be so illusioned by that they may slow down because they think, oh, water is coming now, I have to slow down to 5 kilometers per hour.
जैसे एक मृत्युश नाम देखते हैं सड़क पर अगर हम जा रहे हो तो हमें दूर पानी दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि हमें आस्ते हो जाना चाहिए रफ्तार को कम कर देना चाहिए.
So this whole material world is a mirage. It looks like something, therefore we say that which is not.
तो इसलिए ये पूरा भौतिक संसार उस मृत्युश्न के समान है माया का मतलब जो नहीं है.
So you try to experiment, those of you devotees who go traveling. When you're rolling along the highway and sing this song, you're going to feel like the whole material world just evaporated. You're not going to feel what material world. You're just going to feel like, wow, this is really amazing, you know. I'm saying this in front of Didi, so it means it can't be false. You try this experiment, and you're going to feel the truth of the statement, wow, this is real freedom.
So, aap iska anubhav karke dekhiye ki main vigrahon ke samne ye keh raha hu. कि अगर आप यात्रा पे कभी निकलें और इसको इस ये कीर्तन करें खासकर तो आपको ऐसा लगेगा पूरा भौतिक संसार जो है वो खत्म सा हो गया उड़ सा गया और आपको बहुत ही अच्छा अंदर से महसूस
होगा.
तो जब आप ऐसा प्रयास करेंगे तो आपको अनुभव होगा जो भगवद गीता में कहते हैं कि हम कैसे नियमित रूप से उस आजादी तक जा सकते हैं और जो है क्योंकि साधना भक्ति का मतलब ही यही है कि उस नियमों का पालन करना जिसमें हम असली स्वतंत्र हो सके.
And in case you think it's exaggeration that the entire mahatava can practically evaporate, you might say, Maharaj, dream on.
तो अगर आपको लगा है कि ये सब काल्पनिक बातें हैं और ये कुछ बड़ा चढ़ा के कही जा रही हैं कि महत्त्व भी खत्म हो सकता है तो क्योंकि आप कह सकते हैं कि महाराज ये तो कुछ ऐसी बातें हैं.
But what does the shastra say in this regards about the mahatattva?
लेकिन शास्त्र क्या देखते हैं इसके विषय में खासकर महत्त्व के बारे में?
You say the size of the mahatattva if you're Krishna conscious. If you're Krishna conscious,
अगर आप कृष्ण भावना अमृत में हैं,
what happens to the mahatattva?
तो महत्त्व क्या होता है?
Yes, Prabhu.
It comes to the size of the footprint of a car.
It becomes just like the water contained in the footprint of a car.
Yes, it shrinks down to the size of the amount of water and the hoofprint of a calf.
तो प्रभु जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि इतना बड़ा महत्त्व जो है कैसे बन जाता है गाय के खोर में जितना पानी इकट्ठा होता है उतना बन जाता है.
Then you realize, oh, it's not exaggeration, Maharaj is not exaggerating. It's truth with a capital T.
फिर आप जब ऐसे वाक्य पढ़ेंगे तो आपका अनुभव वो ऐसा आपको अब फिर आपका साक्षात्कार होगा कि महाराज जो है वो झूठ नहीं बोल रहे थे.
So next time you go traveling,
सत्य है बड़े सर के साथ.
Even if you're just going to Vrindavan, just going to Vrindavan.
अगर आप वृंदावन में जाते हैं तब भी ये कर सकते हैं.
If you're on the road, you're rolling along, you're feeling good.
और अगर आप सड़क में जा रहे हैं और गाड़ी चल रही है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है.
You sing this song.
और आप ये कीर्तन कर रहे हैं.
Rama Raghava, 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 Rama Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Rakshama.
Krishna
Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Rakshama.
Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Rakshama.
So visualize your little group singing this song, or even if you're by yourself, you can sing this song. In a car, you're rolling along on the freeway. We call it freeway or flyover. Okay.
So
you say flyover, we say freeway.
So, ऐसा सोचिए कि आप अपने सब मित्रों के साथ जा रहे हैं और खुली सड़क है और उसपे आप यात्रा कर रहे हैं.
And you're going to experience, wow, this is really wonderful.
अगर आप ऐसा कीर्तन कर रहे हैं तो आप
free, free.
ये तो बहुत अच्छा है.
So now, Srila Prabhupada's purport.
Now, Prabhupada ji ka tatpary padhenge.
Well, I'll read the verse again. While walking on the road, Sri Chaitanya Mahaprabhu used to chant this Rama Raghava mantra.
Marg par jaate hue Sri Chaitanya Mahaprabhu is Ram Raghava mantra ka kirtan karte the.
Chanting in this way, he arrived at the banks of the Gautami Ganga and took his bath there.
इस प्रकार कीर्तन करते करते वे गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्नान किया.
The Gautami Ganga is a branch of the river Godavari.
Gautami Ganga, Godavari Nadi ki ek shakha hai.
Formerly a great sage named Gautama Rishi used to live there on the bank of this river opposite the city of Rajamundari.
प्राचीन काल में इस नदी के तट पर राजमहिंद्री शहर के उस पार गौतम नामक ऋषि निवास करते थे.
It's similar to Rajamundari. Raja Mahendri, so I guess it's a different. Yeah, Raja Mahendri.
Raj Mahendri Shahar ke paas.
And consequently, this branch was called the Gautami Ganga.
Isle, jiske karan nadi ki is shakha ka naam Gautami Ganga pada.
I guess that the Raja Mahendri city is not the same as Raj.
तो मैं ये आशा कर रहा हूँ, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो राज महेंद्री शहर है, राज मुंड्रिक शहर है,
ओ सेम, जस्ट प्रोनाउंस डिफरेंट है,
ये एक ही है लेकिन इसको अलग तरीके से बोला
है. राज मुंड्रिक. Then that's where our temple is located.
और वहीं पर ही हमारा मंदिर भी स्थापित है.
And that means that this is the spot then where Ramananda Roy met with Chaitanya Mahaprabhu then.
तो इससे ये पता चलता है कि ये वो स्थान है जहाँ महाप्रभु ने रामानंद रॉय से भेंट की थी.
Second place at that point, the Godavari.
उस तट पर, गोदावरी जी के तट पर.
It's about something like 1.5, almost 2 kilometers wide, you know.
और वो उस तट पर जो गोदावरी जी का जो वो करीबन
दो
किलोमीटर चौड़ी है.
It's a very powerful river.
और बहुत ही शक्तिशाली नदी है.
I want to describe to you about the grand opening of the our temple in Rajamundari.
और मैंने एक बार ही बताया था कैसे राजमहेंद्री में जो हमारे मंदिर की जब उद्घाटन हुआ था.
Anyone remember?
किसी को याद है?
No, certified Kali Yuga. Or maybe you guys are so new that you just don't remember.
ये कलयुग का लक्षण है क्या किसी को
याद? Well, it was very ecstatic. It was very ecstatic. Gosh, I don't know how many years ago this was. Maybe 9 years ago or something.
करीबन 9 साल पहले की बात है और बहुत ही आनंदवर्धक जो वो कार्यक्रम था.
So our temple is located right on the banks of the Godavari.
हमारा मंदिर बिल्कुल गोदावरी जी के तट पर बना है.
Literally.
बिल्कुल तट पर ही बना है.
So at the time of the grand opening of the temple.
और जब मंदिर का उद्घाटन था.
There was a huge mega flood.
और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गई.
So the water went all the way up onto our property.
और पानी हमारे बिल्कुल ज़मीन पर आ गया.
Now Lord Jagannath was to be moved. Lord Jagannath, we had a temple down lower on a lower level, closer to the Godavari. We had an old temple room down there.
तो गोदावरी जी के बिल्कुल तट पर हमारे एक पुराना मंदिर का कमरा था.
But even though it was flooding, they wouldn't move the deities to the new building until it was time for the installation. They were like, you know the word adamant. They were firm about that. They weren't going to move Lord Jagannath until the time of installation.
ऐसा बात जो इस बात के लिए जिद्दी थे कि हालांकि पानी आ गया था मंदिर में और जगन्नाथ बलदेव सुधामणि के विग्रह भी थे लेकिन वो तब तक उसको नए मंदिर में नहीं ले जाते जब तक स्थापना का सही समय नहीं आ जाता.
A funny story surrounding the installation of Lord Jagannath there.
और इसमें एक हास्यप्रद कहानी है जगन्नाथ जी की स्थापना के विषय में.
So Dargiswami was coming with a famous safari party and there was 150 devotees from all the world, 40 different nations.
और जयपुत्र का स्वामी महाराज एक सफारी यात्रा लेके आ रहे थे जिसमें मैं भी था और 40 देशों से 125 लोग थे.
It's really ecstatic pastime of Lord Jagannath.
और बहुत ही आनंदवर्धक जो लीला थी भगवान जगन्नाथ की.
So we heard, oh my goodness, 150 devotees are coming from all over the world along with Jayapata Swami. Wow, Jai. That means we should have Rath Yatra.
हमने सोचा कि अरे वाह जयपुत्र का महाराज आ रहे हैं और 150 भक्त लोग आ रहे हैं 40 देशों से तो इसका मतलब रथ यात्रा होनी चाहिए.
वन स्मॉल प्रॉब्लम.
हमने सोचा कि अरे छोटी सी परेशानी है कि
I mean this was his pastime. This was Jagannath's pastime. I mean they could borrow, you know, their places all over India where you know festival time they borrow Jagannath. There's some traveling Jagannaths also whose Leela is on the road.
तो जगन्नाथ जी सोचा छोटी सी परेशानी है कि गंगा आ गई है तो हम देखते हैं वहाँ जगन्नाथ जी की कई लीला है खासकर जो जगन्नाथ जी यात्रा पर जाते हैं तो वो अक्सर आए की लीला
करते हैं.
और हम देखेंगे इसी एक कहानी के अंदर एक कहानी उसके अंदर एक और कहानी है जैसे
Malaysia temple, the octagonal temple, the grand opening of the temple. I was there by the mercy of Krishna.
और जब ऐसे ही एक और कहानी हुई मलेशिया का में जब एक जगन्नाथ जी का मंदिर खुल रहा था तो मैं वहाँ पर ही था.
So the grand opening there was Jagannath Baladev was about the big ones there.
और बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी थी और मंदिर का
उद्घाटन था. 2 meters tall, huh? 2 meters tall.
2 meters लंबे बड़े जगन्नाथ जी थे.
Big round black eyes.
और बेग काली आंखें भगवान जगन्नाथ जी की.
They were happily presiding over the festival.
और वो सब बहुत ही आनंद पूर्वक जो है उस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और बहुत खुश थे.
But I'm attached to those deities because they're so wonderful.
और मैं उन विग्रहों से बहुत आसक्त हूँ क्योंकि वो बहुत ही सुंदर विग्रह थे.
But I was dismayed because the next day.
तो मैं अचानक दुखी हो गया क्योंकि अगले दिन Poof.
No ending for poof. He was gone. The next day he was gone. After the festival, he was gone.
और अगले दिन क्या हुआ कि वहाँ जगन्नाथ जी गायब हो गए अगले दिन.
Well, because he's their traveling duties. Their leaders are traveling from here to there, and they are restless, as Krishna is restless. And they're traveling from here to the next day, had another engagement, so went poof, gone. I was really like devastated because I looked at the altar in an empty space there, maybe they put a picture, you know. But I was devastated because I was really enjoying their association.
मैं बिल्कुल बिल्कुल हैरान हो गया कि देखा कि भगवान जो है वो ऑर्डर में है नहीं, उनकी जगह ऐसी फोटो रखी हुई है, तो पता चला भगवान
कहाँ गए, यात्रा में निकल गए. You don't know it already, you don't have it memorized, write it down.
अगर आप याद नहीं कर सकते तो कृपा करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए.
Somehow or other, just become attached to Krishna. Anyway, you can do it, but somehow or other, you just become attached to Krishna.
तो किसी तरीके से ये एक प्रकार है ना, हमें कृष्ण से आसक्त होना है. अगर आपको ये चीज याद नहीं रहे तो उसको लिख लीजिए ताकि इसको आप याद कर सकें.
So when Jagannath was gone the next day, I was devastated because I have some attachment for him, very beautiful, wonderful, extremely powerful, very jolly. So naturally, their sudden disappearance was going to cause some separation, you know.
तो उसी तरीके से फिर जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ जगन्नाथ जी वहाँ से चले गए और वहाँ पर ऑल्टर में नहीं है, तो मैं बहुत ही मुझे बहुत बुरा लगा, खराब लगा, क्योंकि मुझे उनसे थोड़ा सा विरह हो रहा था.
Going back to Rajamundry, the person that could have borrowed some Jagannath Baladeva Subhadra from some temple, you know, but actually it was short notice too, you know, so that's the reason just to snap your fingers and borrow Jagannath. Borrow the Supreme Controller. He's supposed to make some, or he didn't have a whole lot of advance notice, and so he says, oh, 150 devotees coming. Oh, darn, I'll have to have a rather extra, then that'll be wonderful.
तो मैं वापस फिर राज महेंद्र के बारे में आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्योंकि अब जगन्नाथ जी की स्थापना होनी थी और वहाँ पर रथ यात्रा के नहीं थे, तो इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं और से जगन्नाथ जी बलदेव होने के विग्रह प्राप्त हो सके ताकि रथ यात्रा आ सके, क्योंकि जयप्रता का महाराज 150 भक्तों को 40 देशों से लेके आ रहे थे वहाँ.
So it seems that they didn't cross his mind to attempt to borrow Jagannath from some other temple. It seems like it didn't even cross his mind.
और किसी के मन में भी नहीं आया कि हम रथ यात्रा के लिए किसी और से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने के विग्रहों को थोड़ी देर पे ले लेते
हैं,
क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं वहां पर जाना चाहते थे और रहना चाहते थे.
It's a great place right next to the river.
क्योंकि वहां पर बहुत सुंदर स्थान है नदी के पास.
So like somebody jumped on an express train to Bhubaneswar and like went down there high speed and quickly got the deities in Puri, you know, a big deities also, the same big meter and a half tall deities, you know, and brought them back just in the nick of time, you know.
तो वे कोई भक्त जो है तुरंत भुवनेश्वर गए और वहाँ से जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने पुरी से ले वापस आ गए और रथ यात्रा की तैयारी होने लगी.
So then it was just before the grand opening. Jagannath Baladev Subhadra, they were already there. I was also there for the installation of Jagannath Baladev Subhadra, very wonderful.
और फिर मैं उस दिन था जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने की स्थापना थी, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ.
So the time of the grand opening, the temple, it was not fully, but it was waist high in water.
और जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मैं वहाँ पर था, मैंने देखा कि जब वहाँ की स्थापना हुई तो
They must have consulted with Jayapataka Swami, I presume they consulted with it, but devotees refused to move the deities even though the temple room was flooded.
तो हालांकि उन्होंने जयप्रदा वहां से सलाह की होगी, लेकिन भक्तों ने जो है वो भगवान को वहां से नहीं हटाया जबकि वहां पर कमर तक पानी था.
To make the offerings to Lord Jagannath and do the seva, they were wading waist high in the Godavari water to serve Lord Jagannath. They were wading and like in Mayapur sometimes it happens also for serving Lord Shingadev. Sometimes they use boats in Mayapur, you know.
तो जगन्नाथ जी की उनकी सेवा करने के लिए, उनको भोग लाने के लिए भक्त लोग कमर तक पानी तक भी वहाँ पर रहकर उनकी सेवा कर रहे थे. जैसे मायापुर में जब बाढ़ आ जाता है तो गंगा जी का पानी अंदर आ जाता है, तो नरसिंह मोहन की भी
so finally, भी
नाव में करके से की मदद लेनी पड़ती है सेवा के.
On the day of installation only, Lord Jagannath was moved up to the new temple.
तो इस फिर जब मोहन के विग्रहों को स्थापित करने का सही समय आ गया तो फिर जगन्नाथ जी को वहाँ से नए मंदिर.
Now, fortunately, they had designed the new temple so that the temple room was on first floor or even the second floor, and so the ground floor was completely flooded. So, if they had tried to have if the temple room had been down there, then it would have spoiled
तो अच्छे सौभाग्य से जो नया मंदिर था वो पहली या दूसरी मंदिर पे था, जो ग्राउंड फ्लोर था वो तो पूरा पानी से भर गया था, लेकिन नए मंदिर में पानी नहीं पहुंचा।
जयपतगा
महाराज ने एक बहुत ही सटीक एक चीज देखी।
See, right next to the temple property, there is a crematorium.
उन्होंने देखा बिल्कुल मंदिर का जो जहाँ मंदिर था उसके पास में ही एक शमशान भूमि थी।
Owned by the city.
जो कि शहर की शमशान भूमि थी।
Where Iskon built the temple was also formerly a crematorium.
और जो जिस जमीन पे मंदिर बना था वो भी पहले
under the ground there might have been some skulls and this and that, who knows.
Aur zameen ke niche kuch haddiyan aur
khopri ashes anyways. Ashes. Crematorium. They say they were burning dead bodies in the spot where the temple was to be built.
Aur wahan par tada kuch raakh milti kyunki usi zameen par pehle jo hai murdon ko jalaya jata tha.
So Jagatmar's observation was that Godavari came up in the flood just to purify the Iskon property.
Jagat!
Godavari, this was revelation. Godavari Devi, the Almighty, this extremely powerful river, 2 kilometers wide, she came up just to purify the Iskon land in time for the installation, daily installation.
So, जब तक मास कोई साक्षात्कार हुआ उन्होंने चीज कही भी कि क्योंकि जिस स्थान पर मंदिर बनना था वो पहले शमशान
थी,
तो गोदावरी जो है वो ऊपर आके उस जमीन को शुद्ध कर रही थी जहाँ पर नया इस्कॉन मंदिर बनने वाला।
So they had to build a bamboo ramp over the top of the entrance of the canopy of the entrance to the ground floor, and so that everybody had to walk on this bamboo ramp that would take them up to the first floor, you see, because the ground floor was completely flooded.
तो फिर भक्तों को क्या करना पड़ा कि उनकी ग्राउंड फ्लोर में पूरी जगह पानी था, तो उनको एक रैंप या उनको एक ऐसा वो बनाना पड़ा जिससे भक्त लोग जो है वो ग्राउंड फ्लोर से पहले मंदिर पर जा सकें।
It was a great festival. It was a great festival, a glorious festival, wonderful event.
और बहुत ही सुंदर और अच्छा कार्यक्रम फिर बाद में।
Later they built a flood wall to try to attempt, but you know this is kind of not a common flood. It's like once every 40 or 50 years or something like that, it would happen right exactly at the time of our temple installation.
तो हालांकि उन्होंने दीवार खड़ी की थी कि आगे अगले अगली बार अगर कोई ऐसी बाढ़ आती है तो वो पानी से बच सके, लेकिन ये बाढ़ जो है वो असाधारण है कि 40-50 साल के बाद आई थी, लेकिन उसी समय आई जब मंदिर की स्थापना हुई।
A railway bridge across the river there, right near the temple.
और एक रेलवे का भी ब्रिज है वहाँ पर बिल्कुल मंदिर के property के पास में।
The trains were instructed to crawl, literally crawl about 5 miles per kilometer across that bridge.
और जितने भी वहाँ से ट्रेन गुजर रही थी तो वो बहुत ही धीमी गति में गुजर रही थी, 5 या 10 kilometer की रफ्तार पर, क्योंकि पूरा पानी हर जगह था।
Because the railway administrators were terrified that the water was so swift. I mean, we're talking about massive. We hear about the waves of the Ganga. We're talking about massive current, millions of crores of water going high speed,
तो क्योंकि वो नदी का गोदावरी नदी का इतना तेज बहाव था, तो जितने भी रेलवे के कर्मचारी थे उनको डर था कि उस बहाव में कोई नुकसान ना पहुंचे, तो इसलिए वो रेलगाड़ी को बहुत धीमी गति से चलने के लिए कह रहे थे।
So the railway administrators were terrified that the foundation of the bridge itself was going to wash away. They were paranoid about that. So that's why they told the trains to go very slow to minimize the vibration for fear that the whole thing would collapse. That we're talking about the mighty Ganga, you see.
तो उनको रेल के जो कर्मचारी थे उनको इस बात का भय था कि इतनी गंगा के तेज भाव से जो ब्रिज है वो टूट ना जाए, तो इसलिए जो है वो कुछ सावधानी बरत रहे थे.
Now we continue. Srila Bhaktivinod Thakur says that Srila Kaviraj Goswami has recorded the name of the holy places visited by Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Srila Bhaktivinod Thakur ka kehte hain ki Sri Chaitanya Mahaprabhu jin jin teerth sthanon par gaye unka varnan to Srila Krishnadas Kaviraj Goswami ne kiya hai.
But there is no chronological order of the places visited.
Kintu vah kram anusar nahi hai.
However, there is a notebook of Govinda Das containing a chronological order and references to geographical positions.
किंतु गोविंद दास की एक किताब है जिसमें भौगोलिक स्थिति के उल्लेख के साथ क्रम अनुसार वर्णन है.
Srila Bhaktivinod Thakur requested readers to refer to that book.
Srila Bhaktivinod Thakur इस ग्रंथ की सहायता लेने के लिए पाठकों से निवेदन करते हैं.
According to Govinda Das, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Srimanda and the Gautama from the Gautami Ganga.
Govinda Das ke anusar Sri Chaitanya Mahaprabhu Gautami Ganga se Trimand gaye.
From there, he went to Dundirama Tirtha, another place of pilgrimage.
Aur wahan se Dundiram Tirtha gaye.
According to Sri Chaitanya Charitamrita, after visiting the Gautami Ganga, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Malakarjun Tirtha.
Sri Chaitanya Charitamrita ke anusar Gautami Ganga ka darshan karne ke baad Sri Chaitanya Mahaprabhu Malik Arjun Tirth gaye.
So these are the ecstatic travels of Mahaprabhu.
Aur Sri Chaitanya Mahaprabhu ke anand se bhari hui kuch yatra.
So next time you're rolling down the freeway or flyover, or next time you're on the Jamuna expressway on the way to Vrindavan, sing this song.
To nishkarsh ye hai ki kabhi aap Vrindavan Yamuna expressway se ja rahe ho ya kisi bhi yatra mein ja rahe ho to ye
any questions
zarur kare kisi ko prashna
questions comments
koi tipni.
Yes Prabhu. Just talk loudly.
Maharaj, it is not a question. He is sharing that I once went to Nasik. He is sharing that I once went to Nasik. तपस्या कर रहे थे और वहाँ शिव जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए. उनके उनके आशीर्वाद से वहाँ पर गंगा जी बहने लगी और उनका नाम गौतमी गंगा रखा गया.
ग्रंथ में श्री चैतन्य चरणामृत की जय. जगद्गुरु श्री गोपाल की जय.